نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 97 آیت نمبر 188 سے 206 سورۃ الاعراف. لیسن نمبر 97 آیت نمبر 188-206 اور سورۃ الاعراف کا یہ آخری سبق ہے. آج کے سبق کا بنیادی تھیم ہے وما قدر اللہ حق کا قدری، کہ لوگ جب اللہ کی قدر نہیں کرتے تو پھر ان سے کیا کیا گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے. آج کے سبق میں ہمیں شرک کی بہت ہی مختلف قسمیں دکھیں گی کہ جس کو عام زندگی میں عموماً ہم اوور لک کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ آج اس موقع پہ شرک کے بارے میں سننے اور شرک کے بارے میں کچھ چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہمارے دل سے شرک کی محبت بھی ختم ہو، اور انجانے میں، بھول پنے میں یا کسی اور وجہ سے ہمارے بھائی بہنوں میں جو بھی اس کا شکار ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نکال دے. پھر اگلی چیز ہے شوہر اور بیوی کا رشتہ سکون کا رشتہ ہے. آج کے اس سبق میں، بلکہ آغاز میں ہی اس موضوع پہ بات ہوگی کہ بیوی کو کیسے شوہر کے لیے سکون بخش ہونا ہے، اور اس رشتے میں آج سکون کیوں نہیں ہے. پھر اگلی چیز اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بندہ کب غیروں کے نام پہ منسوب کرنے لگتا ہے اور اس کی وجہ. پھر آخری ٹاپک جو ہمارا آج کا ہوگا، اعلیٰ اخلاق کی بنیادی قدریں. یعنی آج ہمیں تین گہرے اصول سکھائے جائیں گے کہ اگر میں نے اور آپ نے وہ اپنا لیے اپنی نجی زندگی میں، باہر کی زندگی میں تو ہم سب کرتے ہیں لیکن نجی زندگی میں کر لیے، تو پھر ہمارے گھروں کے 98% جھگڑے اور لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں سکون ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ سبق کے شروع میں اور آخر میں دونوں ٹاپک اس طرح میچ ہوتے ہیں کہ جو بات سبق کے شروع میں چھڑتی ہے اس کا جواب ہمیں آخر میں مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اور اس خواہش کے ساتھ کہ ہم سبق کا حق بھی ادا کریں، اور اس پوری سورت کے تھیم کی کچھ باتیں بھی انشاءاللہ سورت کے اینڈ پہ آئیں گی، اور ایک آخری بات کر کے ہم آیتوں پہ چلتے ہیں، اور وہ ہے کہ اس سبق میں قرآن پاک کا پہلا سجدہ آ رہا ہے، یعنی آیات سجدہ میں سے پہلی آیت سجدہ ہمارے آج کے سبق میں. اپنی میموری کے لیے بھی یہ چیزیں الگ سے نوٹ کر لیا کریں تاکہ بعد میں کبھی ان چیزوں کو ڈھونڈنا پڑے یا اس کے بارے میں کچھ ریسرچ کرنی پڑے تو آپ کو یاد ہو کہ یہ کس سبق میں آیا تھا. تو آئیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 188 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. کہہ دیجئے کہ مجھے تو کوئی اختیار نہیں اپنی جان کے بارے میں بھی کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. پیچھے والے سبق میں ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اور ان کے خیال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیب پر پورا اختیار ہے اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے آپ اس کو جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی کتنے خوبصورت انداز سے ان کی اس بات کو ٹیکل کر رہے ہیں کہ تم مجھ سے تو ایسے آ کے پوچھ رہے ہو گویا کہ اللہ نے اس بارے میں میرے سے دکھ سکھ کیا. میں کان نک خفی، ان پیچھے ہم نے پڑھا خفی وہی لفظ تھا جس کو خفیہ بھی کہتے ہیں، یعنی جس بندے سے خفیہ باتیں کی جائیں، کیا میں وہ ہوں؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اور اللہ تعالیٰ بیٹھ کر دکھ سکھ کرتے رہتے ہیں؟ یہ مراد تھا، صرف انداز بتانے کے لیے ایسے بول رہی ہوں کہ تم مجھ سے آ کے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو حالانکہ اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا. اسی طرح یاد رکھیے کہ بعض لوگ ایک جملہ بول دیتے ہیں، بعض دفعہ میں نے دیکھا لفاظی میں یا بعض دفعہ صرف محبت میں، کہ جی قیامت، یا حروف مقطعات کے بارے میں بھی میں نے یہ بات خود سنی اپنے کانوں سے کہ جی اللہ اور رسول کے بیچ میں راز ہے. اللہ اور رسول کے بیچ میں راز نہیں ہے، اللہ کا راز ہے، اس نے نبی کو بھی نہیں بتایا. کیونکہ صاف روایت ملتی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب حروف مقطعات کی بات آئی تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی مجھے نہیں بتائے، بس یہ ہے کہ الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10 اور میم کی 10 نیکیاں. تو اس کا تھا کہ نبی کو بھی نہیں پتا. تو بعض دفعہ اس قسم کی باتیں کر کے لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں، نیت خراب نہیں ہوتی، لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتوں میں کئی جگہ شرک کا شائبہ ہے. تو یہاں اب اسی بات کو بڑھا دیا گیا کہ نبی کے پاس غیب نہیں ہے، नबी को अगर बहुत कुछ पता होता तो ये बताओ कि फिर इनको ज़िंदगी में तकलीफ़ें क्यों आती। जिन साथियों ने सीरत पढ़ी है वो जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई दफ़ा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सहनी पड़ी, सिर्फ इस वजह से कि आपको सूरत हाल की हकीकत नहीं पता थी, सही सूरत हाल नहीं पता थी। कुछ वक्त गुजरने के बाद जब ये सब कुछ पता चला तो फिर आपने उस बात को समझा, जिसमें एक सबसे बड़ी दलील तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे लगने वाली तोहमत थी। गज़वे मुरैसी या बनु मुस्तलक गज़वे के एंड पे बीच में जो शोशा छुटा, पूरा एक महीना अल्लाह के नबी सल्लम इज़्तिराब और तकलीफ़ में रहे, प्रॉब्लम में थे, लेकिन आपको नहीं पता था कि असल कहानी क्या है। तो यही तो बात कही जा रही है कि देखो तुम कैसी बातें करते हो मेरे सामने, अगर मुझे कुछ पता होता वलौ कुंत आलमुल गैब लस्तकसरतु मिनल खैर, तो फिर तो मैं खैर का कसीर हिस्सा ले लेता। मुझे पहले से पता होता कि दुश्मन जंगों में क्या स्ट्रेटेजी अख्तियार करने वाले हैं तो मैं कुछ और तरीका अख्तियार करता, फिर तो गज़वे उहद में कभी इतनी चोटें लगती, 70 सहाबा शहीद होते। लस्तकसर, तुम्हें देखिए दीन की भी खैर है, नबी की भी खैर है कि फिर मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सारी खैर समेट लेता। वमा मस्सनियस सू, और मुझे कोई तकलीफ़ ना छूती, क्या मेरा दान टूटता? सोचिए अल्लाह के नबी का कातलाना हमला हुआ, कई हुए, क्या होते? क्या आप जहर भरा खाना मुंह में रख लेते? क्या आप यहूदी औरत की दावत पे यहूद के किलों में जाते? कभी भी ना जाते। तो ना तकलीफ आती ना कुछ होती। तो खफी उनका जो लफ्ज़ पीछे थे ना, पीछे पढ़कर सवाल करने और तहकीक करने को कहते हैं। यानी ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने तो अल्लाह के पीछे पढ़ के इस बारे में कोई बात कर दी है, तो लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने इन सारी बातों को अल्लाह से नहीं कुरेदा और मुझे गैब को जानने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ से आप देखिएगा कि तौहीद का जिक्र शुरू हो रहा है, यहाँ से आप देखिएगा कि तौहीद का जिक्र शुरू हो रहा है। और इस पूरी सूरत में हमने कौमों के जवाल की कहानियाँ पढ़ी थी और हर कौम के डूबने या उनके तबाह होने के पीछे शिर्क की कबाहत थी। क्योंकि अगर कौम शुएब ने इकोनॉमिकली या माली मामलात में खुर्द बुर्द की तो उसमें भी कमी तौहीद ही होती है। अगर कौम लूत ने नफ्स की ख्वाहिश को फॉलो किया तो उसके पीछे भी तौहीद की कमी थी। तो याद रखिए कि ये हमारे ईमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह है, गैब अल्लाह के हाथ में है। और यहाँ देखिए लफ्ज़ खैर है ना, तो खैर का लफ्ज़ माल के लिए आता है। यहाँ ये भी मुराद है कि फिर इतनी मुश्किलात सही, एक एक महीना चूल्हा नहीं जलता था, अगर गैब पता होता तो मैं तो सारे पैसे माल खजाना ले लेता। आज भी आप देखिए कि लोगों को अगर खैर का पता हो कि क्या होना है, तो लोग वो स्कीमें ख़रीद लें जिसमें प्राइज मॉन निकलना है, वो लॉटरी ख़रीद लें जिसमें निकलना है। चंद दिन पहले किसी ने एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर भेजी, इसी सोच को उभारने के लिए अच्छी लगी, कि उन्होंने बेसिकली जो मैसेज था उस सारी का, आपको शायद मालूम होगा कि मे बी 2 वीक पहले एक मलेशियन एयरलाइन का तैयारा जो था वो गुम गया, तो वो उसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज था कि अगर हकीकत में लोगों को ये पता है कि भाई चीज़ें गैब की खबरें, तो बुलाओ आज, वेयर आर योर फॉर्चून टेलर, उनको बुलाओ और उनसे पूछो कि वो मलेशियन एयरलाइन का तैयारा किधर है, आज किधर है, वो सारे बड़े बड़े दावा करने वाले और वो चैनल्स और वो बड़ी बड़ी खबरें सुनाने वाले लोग जो कहते हैं कि हम तो ज़मीन के अंदर के भी राज जान लेते हैं, तो इनसे पूछो कि बताओ ज़रा कि फिर वो सारा वो जहाज़ किधर है। आज भी आप देखिए कि अगर इंसानों के पास ये सब कुछ हो जिसकी खबरें उनको बाद में वक्त के बाद मिलती हैं, तो फिर आप ये बता सकते हैं कि लोग तो फिर दुनिया में बादशाह हो जाए। कभी किसी का घर टूटे, हमें खुद नहीं पता हमारी औलादें इस वक्त क्या कर रही हैं, हमारे शौहर क्या कर रहे हैं, शौहरों को बीवियों का नहीं पता। तो याद रखिए कि अपना अकीदा दुरुस्त करें, इसलिए कि बहुत जगह ईमान बिगड़ता है। आज हम ज़रा थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो फिर आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी जिसको देखकर आप देखेंगे कि जब इंसान की अक्ल मारी जाती है, जब उसकी खोपड़ी घूमती है, तो वो किस तरह से शिर्क की दलदलों में फंस जाता है। तो बिल्कुल यही चीज़ यहाँ कहकर कहा कि मैं तो एक इंसान हूँ, क्या है, इन्ना इल्ला नज़ीरुम व बशीर। यहाँ से देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद को नज़ीर और बशीर कहना एक ऑनर है। अल्लाह के नबी नज़ीर कैसे थे कि आपने लोगों को बुरे कामों पर रोकना अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाया था। वही याद कीजिए वाक़ सब्त, लोगों को बुराई करता देख कर आप खामोश नहीं रहते थे, तड़पते थे। और बशीर, लोगों को नेकियां करते देकर खुश होते थे, उनकी लेग पुलिंग नहीं करते थे। जब लोग उनसे पूछते थे कि बताओ ये काम करूँ ना करूँ, तो ये नहीं कहते थे सोच लेते हैं देखते हैं किधर है और क्या है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये इंसान की ज़िंदगी में अपनी तब्दीलियों को पैदा करने के लिए ज़रूरी होती हैं कि वो अल्लाह के नबी का सही मुकाम पहचाने। फिर आप देखिए कि इसी तरह से यहाँ एक और चीज़ भी पता चलती है कि मन नज़ीर व बशीर लिकौमी यूमिनून। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ईमान वालों के लिए नज़ीर और बशीर थे? तो जवाब क्या कि नहीं, थे तो सबके लिए, लेकिन फ़ायदा सिर्फ ईमान वाले उठाते हैं। असल बात यह है। एक और बात इस आयत से पता चलती है कि ये ज़िंदगी इम्तिहान की ज़िंदगी है। नबी हो, वली हो, पैगंबर हो, कोई भी हो, दुख सुख तो आएगा। नबी को कितनी तकलीफ़ें आईं, हर वो तकलीफ़ नबी को आई जो बहुत सारे लोगों को मिल के आती हैं। मैंने जब करवाया था एक मुख्तसर सेशन सीरा का, दुर्र यतीम और डेजर्ट ऑफ द रोज़, एक मक्की दौरा एक मदनी दौरा वेबसाइट पर मौजूद है, आप उसको चंक्स में सुनेंगे तो 2-3 स्टेप्स में आपको पूरी सीरत समझ आ जाएगी। तो उसमें ये बताया था कि किसी इंसान को जो तकलीफ़ हो सकती है, बस आप देखिए कि बच्चा पैदा हो और उससे पहले उसके बाप की डेथ हुई हो, ज़ुबान से हम क्या आता है, हाय बेचारा बाप का इंतकाल हो गया पहले, बचपन में माँ का मरना, प्यारे दादा का फौत होना, फिर आप देखिए कि चचा ने पाला, ये भी एक महरूमी की बात है, फिर गुर्बत, फिर उसके बाद अपने से 15 साल बड़ी उम्र की एक औरत से शादी जो पहले से 2 दफ़ा शादीशुदा बच्चों वाली औरत। ये तो वो तकलीफें हैं ना जो नबी की मिशन की ज़िंदगी से पहले की हैं। और अगर आप आपकी जो नबुवत की ज़िंदगी की तकलीफ़ें उसको गिने तो ये उंगलियों की पोरें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये सब तकलीफ़ें हैं। बेटा कोई नहीं बचा ज़िंदगी में, बेटियाँ आपकी ज़िंदगी में 2 फौत हो गए, तो आखिरी एक बेटी जिंदा रही, बाकी सब बच्चे ज़िंदगी में फौत हो गए। आपकी बीवियों का इंतकाल, आपके चचा का इंतकाल, कौन सा गम, कौन सा दुख, कौन सी तकलीफ़ है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहुंची? लेकिन बात यह है कि जब इंसान गलूफ पे आता है तो इस किस्म की कहानियां घड़ घड़ के दूसरों को भी बाज़ दफ़ा इन चीज़ों में ले जाता है और ख़ुद भी ऐसी चीज़ों पे चला जाता है। तो हमारा अकीदा नबी के बारे में भी दुरुस्त होना चाहिए। अब इसके बाद अगली आयतों में अल्लाह सुबहाना ताला ने एक ख़ास किस्म के शिर्क का तذکرہ किया है। शिर्क का मौजू ये जहन में रखिएगा, लेकिन बीच में शोहर और बीवी के ताल्लुक की खूबसूरतियां भी बयान की गई हैं। आयत 189, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, वही है जिसने तुमको पैदा किया एक जान से, वजअल मिन्हा ज़ौजहा, और उसी से बनाया उसके जोड़े को। नफ्सिन वाहिदा से कौन मुराद है? आदम अलैहिस्सलाम। सूरत निसा का शुरू याद आया, या यूहन्नास वाली आयत के बाद जहाँ आया था लफ्ज़ ज़ौजहा, कौन हुई? बीबी हव्वा मुराद है। और अगर वहां से लें तो बाद वाले हर शौहर और बीवी का तस्करा है। क्यों जौज उसकी पैदा की? लिया सुकुना इलैहा, ताकि वो इसके पास सुकून हासिल करे। यहाँ देखिए कितनी बड़ी हकीकत है, जिसको आज पाने के लिए वेस्ट मारा मारा फिर रहा है। इनके गैजेट्स, इनके हबल और इनकी मशीनें इस राज को नहीं पा सकी कि सुकून बीवी के पास है। ये आज कहाँ ढूंढते हैं? आज की इंसानियत सुकून की तलाश में है, मानते हैं? आज अगर आपने किसी नॉन मुस्लिम को इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट करना है ना, तो आप ये कहिए कि आई गॉट पीस फ्रॉम इस्लाम। इस्लाम जो है ये सुकून देता है। और ये लोग बेचारे सुकून को पाने के लिए, आप देखिए ड्रग्स क्या हैं सुकून पाने के लिए, शराब का नशा क्या है सुकून पाने के लिए, सैड सॉन्ग्स क्यों सुनते हैं लोग सुकून पाने के लिए, शामें, वीकेंड्स, नाइट क्लब्स और होटल्स और पार्टीज में क्यों जाते हैं सुकून की तलाश में, शॉपिंग क्यों करते हैं, गद्दे नरम कपड़े जिस सुकून सुकून, तो उनको नहीं पता कि अल्लाह ने ये सुकून शौहर बीवी के पास रखा है। मैं सोचती हूँ कि हम औरतें अगर अल्लाह को थैंक यू लेटर भेज सकें ना, तो इस आयत को पढ़ने के बाद भेजें कि थैंक यू अल्लाह ताला, और ख़ास तौर पर जो मैरिड खवातीन है, कि अल्लाह ने दुनिया की कीमती तरीन चीज़ बीवी के पास रख दी। और मज़े की बात देखिए, दो बातें बोलूँगी, लिख लें। सुकून जो है ना, असल में जन्नत की चीज़ है। जैसे कुछ चीज़ें हैं ना कि वो बनती कहीं और हैं, लेकिन फिर उसको वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लिया जाता है ना, बाहर भेज दिया जाता है, दूसरे मुल्कों में आ जाती हैं। मिसाल है कि चाय अगर कीनिया में बनती है तो फिर सारी दुनिया में वहाँ भेजी जाती है, लेकिन कीनिया वालों के पास तो फिर चाय बहुत होनी चाहिए ना, पत्ती, समझ गए ना? मिसाल दी है मुझे, सही दी है कि गलत दी है ये मुझे नहीं पता, सुना हुआ बचपन से। बहरहाल, अब आप देखिए कि सुकून बजाते खुद जन्नत की प्रोडक्ट है। सुकून जन्नत में होगा। इस दुनिया में सुकून सिर्फ 2 चीज़ों के साथ कुरान में आता है, एक तो ये आ गया लिया इसको नहीं लेगा, और बिल्कुल यही मजमून हम जाके सूरत रूम की आयत 21 में भी पढ़ेंगे। वमिन आयात ही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, और ये उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारी हम नफ्स बीवियां पैदा की ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत यानी वुद और रहमत पैदा की। तो यहाँ बात हुई बीवी के साथ सुकून की। दूसरा सुकून आगे आने वाले अगली आयतों में आप अगली सूरत में पढ़ लेंगे कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नल कुलूब। तो अब आप इन दो बातों को ज़रा जोड़ें। कुरान की आयतों को जब मुख्तलिफ जगह से इकट्ठा करते हैं ना तो बड़ा ज़हन खुलता है। आप देखिए कि बीवी बंदे की ज़िंदगी का आधा हाफ होती है, बेटर हाफ कहते हैं ना इसको इंग्लिश में। और नबी सल्लम की एक हदीस से पता चलता है कि जिसने निकाह किया उसने अपना आधा ईमान महफूज कर लिया। आधा कैसे महफूज किया? क्योंकि आप देखिए कि एक मर्द की ज़िंदगी देखें तो अगर उसकी ज़िंदगी का उसकी मईशत माशरत सोना जागना खाना पीना वो तो घर से मुतल्लिक है ना, और घर बनता है बीवी से। बाकी आधा किसके साथ है? जिसमें इंसान की इबादत है, जिसमें इंसान का अल्लाह के साथ ताल्लुक है। तो आप कह लीजिए कि घर की ज़िंदगी के सुकून में बीवी जिस तरह अहम है, बाहर की ज़िंदगी में अल्लाह की किताब। जिसके पास ये दो चीज़ें आ गईं उससे बड़ा कोई खुशकिस्मत है। एक मौके पे एक शख्स ने अपनी तंगदस्ती का जिक्र किया और कहा मैं गरीब हूँ। वो आपने कहा अच्छा ये बता कि क्या तेरी शादी हुई है, तेरी बीवी है? कहा जी अल्लाह के नबी बड़ी अच्छी बीवी है, नेक बीवी है। कहा अच्छा तेरे पास इतना को घर है कि किफ़ायत करेगा? जी अल्लाह के नबी गुजारे का घर भी है। कहा कि तेरी ज़ुबान अल्लाह का शुक्र करने लिए ज़ुबानन ज़ाकिरन कल्बुन शाकिरन, यानी रिवायत है पूरी तवील, दो तीन रिवायतों में से खुलासा जो जमा है। तो उसने कहा जी अल्लाह के नबी, तो कहा कि वो बंदा तो बादशाह है इस दुनिया में, वो शख्स बादशाह है कि जिसकी अच्छी बीवी है और जिसका दिल शुक्र वाला है और जिसकी ज़ुबान जिक्र से तर रहती है। आज हम किस तरह रोते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़े, छोटी छोटी बातों पे क्लैशेस। ऐसे लगता है कि हम इस दुनिया को जन्नत बनाने चाहते हैं, तो पता क्या चला कि सुकून सिर्फ बीवी से मिलेगा, गर्लफ्रेंड से नहीं, सेक्रेटरी से नहीं मिलेगा, लिविंग टुगेदर से नहीं मिलेगा। और जिस मर्द ने अपनी बीवी को सुकून से महरूम किया उसको कभी सुकून नहीं मिलेगा। बीवी मर्द को सुकून कब देगी? जब मर्द उसको सुकून देगा। ये भी याद रखिए, औरत अल्लाह सुब्हान व तआला का एक शाहकार है, मैं तो ऐसे ही कहती हूँ। आप इसको माँ के रूप में देखें तो आपको फूलों की नरमी दिखेगी, आप इसको बहन के रूप में देखें तो एक ढारस देने वाली बड़ी खूबसूरत ऐसे गिरती दीवार को सहारा देने वाली ईंट लगेगी। आप अगर इसको एक बेटी के तौर पर देखें तो आपको एक बिल्कुल खिलती हुई कली दिखेगी, और बीवी के साथ देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि आपके साथ कंधे से कंधा चलाने वाली आपकी बेहतरीन साथी है। अल्लाह ने इस औरत को इतना खूबसूरत बनाया, कई इसके ऊपर आपको कोटेशंस मिल जाएंगी कि फूलों की नरमी और खुशबू के झोंके और क्या कुछ मिला तो फिर औरत बनी है, तस्वीर जन से कायनात में रौनक। हकीकत है औरत अल्लाह का शाहकार है, और हम इस पर अल्लाह ताला का लाख शुक्र करें कि उसने हमें औरत बनाया। लेकिन बाज़ दफ़ा होता क्या है कि हम अपने औरत होने को औरत रखते नहीं हैं, और ख़ास तौर पे इस रिश्ते में आज सुकून क्यों नहीं दिखता। मैं नॉन मुस्लिम्स की बात नहीं करती, हम मुसलमान घरानों में भी क्यों बेसुकूनी है? मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि मुझे सिर्फ इसलिए लोग कांटेक्ट कर लेते हैं कभी कभी कि मैं वो बात अच्छी बताऊँ, और ये अल्लाह की तरफ से जो बात पढ़नी होती है उसके लिए हिसाब बन जाता है। रोती तड़पती बीवियाँ फ़ोन करती हैं, ये हो गया मियाँ ने ये कह दिया वो कह दिया, यानी मैं अपने दिल में इस तरह गुदाज इस वक्त भी महसूस कर रही हूँ कि अल्लाह मेरी उस बहन पे खैर कर दे जो अपने शौहर की तरफ से परेशान है। लेकिन हालात क्या हैं कि हम सब असल में अपनी ज़िंदगी का असल हुसन नहीं समझे। सूरह बकरा में हम पढ़ चुके हुन लिबासुल्लकुम वअन्तुम लिबासुल्लहुन, वो तुम्हारा लिबास है तुम उनका लिबास हो। मेयार तो वहीं मिल गया था। देखिए कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं? चुभने वाले, अकड़े हुए, कलफ लगे हुए नहीं, सॉफ्ट कपड़े अच्छे लगते हैं। तो आप अपने आप को सोचें कि मैं अपने शौहर का लिबास हूँ, तो जितनी सॉफ्ट जितनी फ्लेक्सिबल जितनी स्ट्रेची जितनी शाइनी होंगी उतना उसको सुकून मिलेगा। और बीवी हो अकड़ी हुई गर्दन वाली बिल्कुल कलफ वाले कपड़े की तरह तो मर्द को सुकून मिलेगा। वो गर्लफ्रेंड के तौर पे होगी तो बहुत खुश है कि ठीक है वो भी उसको यार के वो भी उसको यार के और वो भी उसका नाम ले वो भी नाम ले, लेकिन जब वो बीवी बनेगी उसकी अकड़ कुछ कम होनी ही पड़ेगी। लेकिन जो औरतें अपने अंदर एक हुन्नस भरी होती है ना, जिसके अंदर दिमागों में बड़ापन होता है ना, तुम बड़े बाप की बेटी हो, तुम्हारे पास ये है, तुम वो तुम ये, तो याद रखिए कि वो फिर मर्दों के साथ भी नहीं झुकती। फिर दूसरी बात एक और जहन में रख लीजिए कि इस रिश्ते की खूबी देखिए कि दुनिया में इंसान को भेजने के बाद सबसे पहला रिश्ता क्या बना, माँ बेटे का नहीं, भाई बहन नहीं, ज़ौजहा मिन्हा इलैहा। सूरत निसा में पढ़ा, जहाँ पढ़े सूरत जाके रूम में पढ़ेंगे तो पहला रिश्ता बीवी का शौहर से बना, इससे रिश्ते की खूबसूरती दिखती है। इसलिए इस्लाम बिल्कुल पसंद नहीं करता कि बिला वजह मुजर्रद रहा जाए, मुजर्रद मीन अकेले रखा जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि आज शादी के नाम से बाज लोगों को कुछ होने लगता है, शादी नहीं करनी, वजह क्या ये है? देखिए इंसान ख्वाहिश रखे और ना हो तो इसमें अजर है, अपनी इज्जत अजमत को पाक रखते हुए वो लड़के लड़कियां अल्लाह के रस्तों में लगे रहे, देखिए उसमें कितना अजर और सुकून कितना है। लेकिन जानबूझ के कहना कि नहीं करना ये दुरुस्त नहीं है। फिर इसी तरह आप देखिए कि आज क्यों हालात बदल गए, क्योंकि आज शादी का असल मकसद हम भूल गए। आज शादी एक बिजनेस बनता जा रहा है, आज हम डिमांड करते हैं, बस दफा शादी एक किस्म की डील दिखती है कि हम ये देंगे तो वो देंगे, लड़की इस घर की है तो लड़का उतना बड़े घर का है। और बस दफा हम देखिए कि इतने डिमांडिंग हो जाते हैं कि हम मोहब्बत भी डिमांड करते हैं। आप मुझसे प्यार करें, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? सीधी सी बात है, जितना आप डिजर्व करती हैं। याद रखिए दुनिया में किसी रिश्ते में मोहब्बत ठीक के साथ नहीं मिलेगी आपको। कोई मुंह पे आपको 10 दफा कह दे अपनी इज्जत बचाने, जान बचाने के लिए लव यू आई लव यू, आपके मियाँ आपको 10 दफा दिन में कह दें, लेकिन मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि असल वो आपसे प्यार तब करेंगे जब आप उस प्यार को डिजर्व करेंगी। और फितरत का एक असूल याद रखिए कि देने वाले लेते हैं, जब आप देते हैं तो लेते हैं। अब आज बिगाड़ क्यों है? इसकी बहुत बड़ी वजह मादा परस्ती है, मादियत, मटीरियलिस्टिक होना, फितरत के खिलाफ चले। कायनात का एक खूबसूरत निज़ाम था, शोहर का एक अलग लाइन ऑफ एक्शन था, बीवी का अलग था, दोनों का माहौल बिल्कुल फ़र्क था। जैसे ये देखिए कुर्सी और मेज़ है ना, जहाँ हम बैठे हैं, कुर्सी झुकी हुई है, मेज़ ऊपर है खड़ा है। आप कुर्सी को ऊंचा कर दें, मेज़ के बराबर कर दें, क्या आप इस वक्त आराम से बैठ के लिख सकेंगे? नहीं लिखेंगे। तो कुर्सी का बैठना ये कुर्सी का मुकाम था और टेबल का ऊपर होना टेबल था। चलिए आप कहते हैं कुर्सी की तो बड़ी इंसल्ट है, मेज़ अच्छा है, तो खाली मेज़ रख दें, आप क्या करेंगे? ज़मीन पे बैठ के आप मेज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं? आप कहते हैं हाँ ये तो नहीं, चले ठीक है मेज़ हटा दो बस कुर्सी ठीक है। तो कुर्सी खाली पे तो फिर भी बैठ जाएंगे, खाली मेज़ पे नहीं बैठते। बिल्कुल आप कुर्सी को लगा ले औरत और मेज़ को लगा ले मर्द, इतना सा फ़र्क तो होना ही पड़ेगा। और बचपन से बच्चियों की तरबियत में ये चीज़ दे के भेजना चाहिए घरों से उनको कि औरत की असल जगह मर्द से एक बालिश नीचे है। कद देख लीजिए, नॉर्मल हालात में अल्लाह सुब्हान तआला ने पाँव का नाप देख लीजिए, मर्दों का बड़ा होता है, औरत का छोटा होता है, हाइट में डिफरेंस होता है, विड्थ शोल्डर देख लीजिए। आज स्वेटर्स लेते देते वक्त क्यों देखते हैं ये लेडीज़ है कि ये जेंट्स हैं? छोटे छोटे फ़र्क कोई माने ना माने ये मौजूद है। तो जब हम फितरत के असूल पर रहेंगे तो हमारी हर चीज़ रूम टेम्परेचर पर रहेगी। जो जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करेगा वो ज़रूर शिकवे पैदा करेगा। आज जुल्म क्या हुआ कि औरत को उठाकर मर्द की जगह पे रख दिया गया और मर्द को उठाकर औरत की जगह पे डाल दिया। जिसने फितरी निज़ाम में मुदाखलत की ना उसने सुकून छीन लिया। जहाज़ में बैठने साथ कितनी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अगर हम जहाज़ के बटनों से खेलने लग जाएं, चलो इमरजेंसी डोर है, मेरा कई दफ़ा दिल करता है कभी वहाँ नमाज़ पढ़ते हुए ऐसी आउट ऑफ क्यूरियसिटी कि कभी इसको खोल के देखें होता क्या है, अल्लाह ना करे चलते जहाज़ में तो नहीं, लेकिन ख्याल आता है ना करके देखे क्या होता है, निज़ाम बिगड़ेगा ना। आप वो कहते हैं आप बंद कर दीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स, आप कहते हैं चलो खोल के देखते हैं होता है क्या, वो कहते हैं फ़ोन बंद कर दो, आप कहते हैं चुपके चुपके सुने क्या होता है, डिसऑर्डर होगा। इसी तरह का डिसऑर्डर आज हमें दुनिया में दिखता है। वो लोग जो दुनिया के ज़िंदगी के सफ़र में एक दूसरे को सहारा देने वाले थे, मोहब्बतें देने वाले थे, आज वो एक दूसरे से लड़ने झगड़ने वाले क्यों बन गए? इसलिए कि शादी का असल मकसद शादी नहीं रही। शादी को बासफ़ा याशी का ज़रिया समझा जाता है, जिम्मेदारियों का नहीं। हम शादी के दिन को अपनी सारी तमन्नाओं का माहौर बना देते हैं। शादी का दिन ऐसे होता है कि बस पहला और आखिरी दिन है खुशियों का, और अमूमन ऐसे ही होता है। शादी वाले दिन जो लोग खुश होते हैं उसके तीसरे चौथे दिन के बाद से शिकवे गिले और लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं। किसी एक सिस्टर ने कहा कि हमारी पहली लड़ाई शादी के शायद तीसरे दिन हो गई थी। वल्लाह होती है ये, देखिए एक दो दिन तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, जब आदत ही बदली हुई होगी तो तीसरे दिन से ज्यादा बंदा नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो लिहाजा इस मामले में इंसान को बहुत केयरफुल रहना चाहिए, अपनी जिंदगी को रखे। अब आपके जहनों में जितने सवाल हैं वो मेरे भी जहन में आ रहे हैं कि अच्छा फिर शोहर कॉपरेट ना करें, ये ना करें, वो ना करें। तो पहली बात देखिए कि जो शोहर बन गए हैं, अब आपने ही चुना था उनको, आपके पेरेंट्स का फैसला था, अब उन्हीं के साथ निभा करना है। दूसरी बात है कि कुरान आप पढ़ रही हैं, वो नहीं पढ़ रहे। जब तक आप अपनी जगह रखने के साथ साथ, यानी अपनी जगह नहीं छोड़नी, हमारे कल्चर की बहुत बड़ी गलती क्या है कि जब बीवी को ओबीडियंसी सिखाई जाती है तो साथ ही उसको हलाल हराम का फर्क नहीं बताया जाता, लिमिट्स एंड उसकी जो बाउंड्रीज हैं उस वो नहीं बताई जाती, तो फिर लड़कियां बिल्कुल ही पांव की जूती बन जाती हैं, वो काम भी शौहर के लिए करने लग जाती हैं जो नहीं करने होते। तो बहुत ज़्यादा क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस के साथ बेटियों को भेजना चाहिए। और आप और मैं कुरान पढ़ते हैं तो कम अज़ कम कुरान हमारे साथ ये मामला तो करता है कि हमें बिल्कुल खुल के बताता है। दीनदार औरत का मतलब बेवकूफ़ औरत नहीं होती, वो उल्लू बनी हुई औरत नहीं है कि आप उसको जो गलत काम के वो कर ले। और जब आप बाकी अपनी सारे काम अच्छे करते हैं तो आपका हक है कि आप उस वक्त बोल सकते हैं। तो ला तअतल्ली मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, यहाँ जो चीज़ें इसको फील करें, यहाँ सख्ती गर्मी की बात नहीं, ये मिजाज की बात है। जैसे टेक्सचर होता है ना एक चीज़ का, औरत बाय टेक्सचर सॉफ्ट होनी चाहिए, चाहे वो रिलीजियस बात करे या नॉन रिलीजियस बात करे। उम्मीद है कि इतनी बात समझ आ गई होगी, आगे चलेंगे तो कुछ बातें और भी समझ आएंगी। अब शौहर और बीवी के ताल्लुक की तरफ इशारा, फलम्मा तगश्शाहा, बस जब वो शौहर ढांप लेता है उसको, हा के नीचे लिख लीजिए फीमेल ज़मीर है यानी मुअन्नस है, मर्द औरत को ढांपता है, हमलत हामिला हो जाती है, ता जो है यहाँ मुअन्नस की है, फिर क्या होता है हमलन खफीफन, हल्का सा हमल रह जाता है, फिर भी फमरत भी, तो वो औरत उसके साथ चलती ही रहती है। एक स्ट्रेच में पढ़ेंगे, तो जब वो शौहर ढांप लेता है उसको यानी अपनी बीवी को, तो इसे हमल हो जाता है, हल्का सा हमल, तो वो इसके लिए इसको साथ लिए लिए चलती ही फिरती है। यहाँ देखिए कि शौहर और बीवी के ताल्लुक के लिए किनायतन, किनाया समझते हैं, रैप रैपिंग, बात समझ आ जाए लेकिन वर्ड्स जो हैं वो बड़े ढके छुपे हों। यहाँ इशारा है शौहर और बीवी के जिस्मानी ताल्लुक की तरफ, इंटरकोर्स की तरफ। दूसरी बात देखिए कि यहाँ अल्लाह सुब्हान ताला ने एक हल्का सा इशारा दिया फितरी तरीका, और फितरी तरीका यही है, गो की इजाज़त मौजूद है, पीछे आप पढ़ चुके कि बीवियाँ तुम्हारी खेती हैं, तुम जिस तरह से भी आना चाहो, उसमें गुनाह नहीं हराम नहीं, लेकिन फितरत का तरीका यही है जिसका इशारा इसमें आया हुआ है, ठीक है। और तगश्शा का जो लफ्ज़ है, गशी गशावतुन, पीछे आप पढ़ चुके ढांपने के मानों में। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ लफ्ज़ आया हमलत और हमलन, हमल एक लफ्ज़ होता है वो बोझ, इसको लिख लीजिए फ़र्क थोड़ा सा, हमल कहते हैं वो बोझ जो पेट उठाए या दरख्त उठाए, दरख्तों पे जो फल लगता है ना, इसको भी हमल कहते हैं, ये खुशगवार बोझ होता है। अब आप महसूस कीजिए कि ये पेट आगे होता है ना, तो ये वो बोझ है जो आगे की तरफ झुकता है, और दरख्त की भी शाखों के आगे फल लगता है ना, तो वो झुकती हैं। इसके बरक्स जब हमल की बजाय हिमल हो, ये भी अभी आगे आएगा कुरान में, तो हिमल होगा तो वो बोझ जो कमर पे उठाया जाए, बैक पे उठाया जाए, ये नागवार बोझ होता है, जैसे इस सिर पीछे पड़ा, ठीक है। हफीफन में इशारा है इधर नुतफे से मुदगा और मुदगे से अलका, यानी बिल्कुल जब प्रेगनेंसी का आगाज होता है तो औरत को खुद भी नहीं पता चलता कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, औरत बिल्कुल नॉर्मल होती है, आम हालात होते हैं, नाकाबिले बर्दाश्त। ये देखिए अल्लाह ताला की कुदरत की कितनी बड़ी निशानी है, माँ को भी नहीं बाज़ुकात पता होता कि क्या होता है, फिर क्या होता है वक्त गुजरता रहता है, फलम्मा अस्क़लत, फिर जब वो बोझल होती है। इस आयत में जितने एंड पे ता साकिन वाले आ रहे हैं ना, ये मुअन्नस के हैं, रूट के नहीं है, तो फमर्रत भी चलती है उसको लेकर भी, फलम्मा, इससे क्या पता चलता है कि प्रेगनेंसी में बैठ नहीं जाना चाहिए, ये लिख लें, मर्रत भी चलती रहती है, और हकीकत हमारी नानियाँ दादियाँ आखिरी दिन तक चलती रहती थी, जब तक पता ना चले तो लड़कियाँ भी नॉर्मल होती हैं, जिस दिन टेस्ट होके आ गया पता चल गया उसी दिन बेड रिटन, आप जी बेड रेस्ट कहा हुआ है, अब ये कितनी हैरत होती है। आज जितनी आसाइशें, जितनी नेमतें, जितनी वाइटामस और ताकत की दवाइयाँ, उतनी लड़कियाँ ऐसे मौक़ों पर आप देखिए कि निढाल हो जाती हैं, फमर्रत भी ही, इसको लिखिए, चलती रहे औरत, बैठे नहीं। आप पढ़ेंगे सूरह मरियम में, इस पे बड़ी डिटेल आएगी कि क्या प्रेगनेंसी और डिलीवरी के अंदर औरत को रवैया अख्तियार करना चाहिए। आज ये भी गैर फितरी तरीका है, इतने नरम मिजाज और अपनी बच्चियों की तरबियत ही हमने ऐसी कर दी, इतनी सी बीमारी नहीं सह सकती। तो याद रखिए, प्रेग्नेंट होना कोई बीमारी नहीं है, ये अल्लाह की नेमत है। इस नेमत को लेके जितना इंसान इसको पीछे कर दे, और जब हर हफ्ते चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो ज़हनी तौर पे बीमार तो समझेंगे, पता चल गया ना प्रेग्नेंट है, भूल जाए, कोई डॉक्टर नहीं कुछ नहीं, जब होगा तो देख लेंगे। ये डॉक्टर्स पे जाके और प्रिकॉशंस लेके आना और सास को कहना उन्होंने बेड रेस्ट कहा है मुझे, वो कहेंगे अच्छा फिर अम्मा के घर जाओ, मैं तो तुम्हें इस तरह नहीं रख सकती। फिर उठा के आपको माँ के घर भेज देंगे तो फिर वो कहेंगे अच्छा वहाँ ऐश कर रही हैं, चलो अब आ जाओ, अब ठीक हो गई होगी। यानी कितने झोल हैं। बहरहाल अब इसके बाद क्या हुआ, फलम्मा अस्कलत, फिर वो बोझल होती है, इशारा है प्रेगनेंसी के बढ़ने के दिन, यानी आगे वाले दिन ज़रा उसका वजन बढ़ने लगा, वेट गेन किया। दावल्लाहा, ये दोनों पुकारते हैं। यहाँ देखिए दा वा के आगे अलीफ है ना, इसके आगे नून था, ये तस्निया है, ड्यूल है। दोनों पुकारते हैं, मत शोहर और बीवी दोनों पुकारते हैं, रब्बहुमा, उन दोनों के रब को, ये मुराद है। यानी जब प्रेगनेंसी होती है तो शोहर और बीवी दोनों रब को पुकारते हैं, क्या कहते हैं, इससे पहले आप इन्वर्टेड कॉमास लगाना चाहें तो ये लगा सकती हैं, क्या कहते हैं, लाइन अतैतना सालेहन, अगर तू हमें सही सालम बच्चा अता करेगा, लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, तो हम तो तेरे शुक्र गुजार बंदों में से होंगे। फितरी बात है, जब औरत प्रेग्नेंट होती है और ख़ास तौर पे जब पहला बच्चा होता है तो खौफ होता है कि बच्चा ठीक हो, सही बच्चा हो, नेक हो। सालेहन में यहाँ दो तरह के सालेह मुराद हैं, नंबर एक सलीमुल जिस्म, यानी हैंडीकैप्ड ना हो, बच्चे का कोई पार्ट जो है वो मिसिंग ना हो, और दूसरा सलीमुल फितरत, बेऐब हो, बेनक्स हो, तबीयत अच्छी हो, उसके अंदर कोई ख़राबी ना। और आप देखें ये फितरी खौफ है, हर माँ बाप के दिल में होता है, किसी मज़हब किसी कल्चर के लोग हों, ये सब कुछ इसी में होता है। अच्छा अब क्या होता है फिर उसके बाद, आयत 190, फलम्मा आता हुमा सालेहन, फिर जब अल्लाह ने इनको अता कर दिया सही सालम बच्चा, अब बच्चा हो गया, जाला लहू शुरका अफीमा आता हुमा, तो ठहरा लिए इन्होंने इसके शरीक इसमें से जो अल्लाह ने इनको अता किया था। ये देखिए ज़रा कैसी अजीबोगरीब बात है कि जब तक बच्चा नहीं होता पुकारते किसको थे, दावल्लाह, अल्लाह को पुकारते थे, लेकिन जूं ही वो बच्चा हो गया फिर क्या कहते हैं वो शरीकों के नाम, मसलन इमाम बख्श, क्या मतलब इस नाम का, इमाम ने बख्शा, पीरा देता, पीरों ने दिया, नबी बख्श, क्या मतलब है, नौसुबिल्ला, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं कि उनके नाम ही मुशरिकाना है, बंदा अली, नौसुबिल्ला, कनीज फातिमा, और इस तरह के और नाम बहुत सारे होते हैं। यानी जब बच्चा हो जाता है तो उसको शरीक बनाते हैं। चले ये तो नाम थे शरीक बनाने के, और कैसे लोग शरीक बना देते हैं, आज के दौर की कोई मॉडर्न रस्म, गोद भराई, बेबी शावर, जब आप बच्चे का बेबी शावर करते हैं और लोग आपके घर में गिफ्ट्स लेके आते हैं और ब्लू भी लाते हैं और पिंक भी है क्योंकि आपने पहले पता चला लिया, किसको पता है कि ये बच्चा होगा, पहली बात है, और ख़ुदा नखास्ता मिसकैरेज हो जाए या डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो सारी चीज़ों को देख देख के माएँ जहनी मरीज़ होती हैं। और ऐसी एक माँ की बात मुझे याद आ रही है कि बच्चा नहीं बचा तो वो कहती वो तोहफे अब मुझे खाने को दौड़ रहे हैं, घर तो पहले ही भर जाता है बच्चों के आने से पहले ही नीले पील की चीज़ों के साथ और सारे लोग लेके आ जाते हैं। तो याद रखिए कि ये चीज़ तवक्कुल के ख़िलाफ़ है, बच्चा जब होगा अल्लाह उसका रिस्क देगा, बच्चा आएगा ना अल्लाह चीज़ें भी आपको दे देगा, पहले दौर में ढक छुप के ये काम होते थे, बच्चे पैदा हो जाते थे ना फिर माएँ वो निकाल के चोरी चोरी सिए हुए झपले निकालती थी, बड़े बच्चे फिर कहे अच्छा ये इसके लिए सिल रहा था हमें नहीं पता, हम समझे आप गुड़िया के कपड़े सी रही हैं। आप लोगों ने ऐसी सुनी हुई ना बेवकूफियाँ, आज तो बच्चे पेट पे माँ के हाथ रख के कहते हैं कि बेबी इज इनसाइड, बिलीव मी मैंने खुद देखा है। और क्या कहते हैं हम इस बच्चे का माइंड बना रहे हैं, ये माइंड बन रहा है, उसकी मासूमियत छीन रहे हैं आप। जब आप 7-8 साल के बच्चे को उसकी पूरी बॉडी अंदर से पढ़ा देते हैं और 7-8-9 साल के लड़के लड़कियों को इकट्ठे पढ़ाकर पूरा लड़कियों का सिस्टम पढ़ा देते हैं तो क्या फिर ये गे मैरिजेस अलाउड नहीं हो जाएंगी 2-4 सालों में, हो गई है तो क्यों इसमें आप परेशान है, जिस दरवाजे को खोलेंगे रास्ता उसी में जाएगा। तो याद रखिए कि ये सब चीज़ें फितरत के खिलाफ है। अब ये बात यहाँ तो हमने अपने आज के माहौल में पढ़ ली, जिस माहौल में ये हुआ था उस माहौल में क्या होता था? बच्चा जब पैदा होता था ना, तो उसको अपने बुतों के नाम पे डिवोट करते थे, बुत के सामने पेश करते थे, बाज दफा मंदिरों में ले जाकर। और आज भी ऐसा होता है हिंदू धर्म में, तो जो वहां के प्रीस्ट या जो उनकी जुबान में जो भी साधु होते हैं, फिर वो उनसे जाके उस बच्चे को कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते थे। इसी तरह कुछ कल्चरों में क्या होता है कि जब बच्चा पैदा हो तो चांदी की जुबानें, ये भी किसी की बात मैंने खुद सुनी कि कहीं गई तो कब्र थी, किसी कब्र पे तो बाहर छोटी छोटी दुकानें होती है ना, तो वहां क्या बिक रहा है? बॉडी ऑर्गन्स बिक रहे हैं चांदी के, सोने के बने हुए। नहीं, आंख बनी हुई है, आप सोचिए, जुबान बनी हुई है चांद। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या? तो उन्होंने कहा कि प्रेग्नेंट औरतें आती हैं और यहां से जुबान खरीद के तो कब्र पे चढ़ाती हैं, क्यों? कि बच्चा गूंगा ना पैदा हो। यहां से कान खरीद के डालती हैं, और अगर किसी के गूंगे बहरे पैदा हो चुके तो वो भी यही करते हैं कि यहां से ला के इन बाबा जी के नाम पे इधर से उधर और उधर से इधर करते हैं, और कहते हैं कि ये बाबा जी हैं जो इस बच्चे के साथ मामला करेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो, जाला लहू शुरका फी माता हुमा फताल्लाहुम्मा युश्रिकून। अल्लाह बहुत बुलंद वाला है इनके इस शिर्क से जो ये करते हैं। अल्लाह इनके सारे शिरकों से बेनियाज है, ये जो कुछ करते हैं ना, अल्लाह ताला इससे बेनियाज है। सूरत नहल आयत 20 और सूरत हज आयत 73 में भी आप यही बात पढ़ेंगे, जिसमें शिरक का रद्द है। केवल लजीना यदून अमिन दून अल्लाह, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते हैं। और इसी तरह सूरह हज की आयत 73 में मक्खी की मिसाल देकर अल्लाह ताला ने बताया कि किस तरह मक्खी जो है वो लोगों के पास से कुछ ले जाए तो वो उसको वापस नहीं ला सकते, तो बाकी चीज़ें कहाँ लेकर आएंगे। तो बहरहाल आप देखिए कि ये वो चीज़ें होती हैं कि जो इंसानों की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा तबाही पैदा कर देती हैं। आप देखिए कि शिर्क जैसी चीज़ जिससे नफरत है, जिसकी बुनियाद पे जन्नत और जहन्नम के फैसले हैं, उसको अगर हम अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे तो फिर बाकी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कहाँ ख़त्म होंगी? आज के मुसलमान कहाँ बेहयाई ख़त्म करेंगे अगर शिर्क ख़त्म नहीं किया? आज हम मुसलमानों का हाल क्या है? खैर बुराई तो हमारे अंदर आ गई है और हम दूसरों की तरफ लेके आए। अगली आयतें इसी टेक्स्ट में पढ़ते जाएं, फिर आपको कुछ दिखाते हैं। आयत 192 में देखिए, अब अल्लाह ताला उनके जो शिर्क थे ना, बुत और जो आज के दौर में कह लें जो कब्रों वालों को पुकारते हैं, तो उनकी कहानियां पेश करते हैं जी। आयत 191, अयुश्रिकून माला यखलुकु शैयं वहुम युखलकून। क्या वो इनको शरीक कर रहे हैं अल्लाह के साथ, जो कोई चीज़ तख्लीक करते ही नहीं बल्कि वो खुद भी मखलूक है? यानी जिनके पास जाके बुतों की तरफ इशारा है, तो जिन बुतों से जाके मांगते थे, हम फलां बुजुर्ग के मज़ार पे गए जी, उनकी नजरे करम हो गई, फलां देवी देवता की कृपा से ये औलाद मिली, अल्लाह कहते फताल अल्लाहुम्मा युश्रिकून, अल्लाह उन सब से बेनियाज है जो तुम शिर्क करते हो। अच्छा चलो, कुछ सवालों के जवाब तो दो। अयुश्रिकून माला यखलुकु शैयन, क्या वो उनको शरीक कर रहे हैं यानी अल्लाह के साथ, जो कोई चीज़ तख्लीक करते ही नहीं, बल्कि वह हम युखलकून, बल्कि वो तो खुद मखलूक है। बताओ भला, क्या ये किसी को पैदा कर सकते हैं? देखिए, जो बंदा खुद पैदा किया गया, क्या वो किसी दूसरे को पैदा करेगा? इशारा है फरिश्ते और जिन्नात, अम्बिया और औलिया कराम की तरफ, जिनको लोगों ने अल्लाह के शरीक ठहराया। फिर आयत 192 में फरमाया, वला यस्ततीउन लहुम नसरन, और ना वो इनकी मदद कर सकते हैं, वला अनफुसहुम यंसुरून, और ना वो अपनी मदद पर कादिर हैं। देखिए, शिर्क मुख्तलिफ तरह से हुआ। जिंदा इंसानों को लोगों ने पीर बना के शिर्क किया, कब्रों में सोए हुए नेक बुजुर्गों को लोगों ने उनके नाते से शिर्क किया, ऐसे ही अपनी सोच के साथ बनाए हुए कुछ बुतों को शिर्क बना दिया, कुछ ऐसे लोगों को। अल्लाह कहते हैं वो तो अपनी भी मदद नहीं कर सकते। ये जो यस्ततीउन का लफ्ज़ है ना, तोए वो आइन है, इशारा है बुत और साहिब कब्र की तरफ, और लहुम से मुराद है वो चीज़ जो मांग रहे हैं उनसे, यानी जो लोग बुतों से मदद मांगते हैं वो बुत तो अपनी भी मदद नहीं कर सकते। आप सर एक लम्हे के लिए सोचिए, इस वक्त आप बैठे हैं, मैं आप में से किसी को भी कहती हूँ कि इरम पानी दे दे, इरम ला सकती है ना, मैं इनको कह दूँ ये कुर्सी उठा दीजिए, ये उठा देंगी ना। बिलफर्ज इरम गहरी नींद में सोई हूँ और मैं यहाँ अपनी इसी आवाज़ से कहूँ कि इरम पानी दे दें, क्या इरम वो पीछे बैठी हुई मेरी आवाज़ सुनेंगी? हम खुद जब सो जाते हैं तो बताइए कि हमें याद रहता कुछ? फोन भी बैलो, हम कहते हम सो रहे, चलिए अब सोने को कर दे मरना। कोई मरा हुआ और आप उसके पास जाके कह रहे हैं बेटा दे दो, बेटी दे दो, क्या बात समझ आती है? हकीकत यह कि शैतान शिर की वजह से अकल मार देता है। आप सोचें कि जब कोई बंदा सो रहा हो और एकदम कोई उसके ऊपर मट्टी डाल दे, हड़बड़ा के उठ जाएगा ना। कभी सोते में कंबल मुंह पे डल जाता है तो एकदम इंसान घबरा के उठ जाता है। तो जिस बंदे को इतनी सी बात नहीं समझ आती, उसको बाकी बातें कहाँ समझ आएंगी। आयत 193, अल्लाह सुबहान तआला यही बात फरमा रहे हैं, वइन तदउहुम इलल हुदा ला यत्तबियूकुम, अगर तुम इनको पुकारो रहनुमाई के लिए ताकि तुम्हें रास्ता दिखाएं, तो वो तुम्हारी तरफ तवज्जो ही नहीं कर सकेंगे। इस आयत के दो मानी है, एक तो वही है जो किया है, यानी इन बुतों को तुम बुलाओ। यहाँ देखिए लफ्ज अल हुदा आया ना, ये रहनुमाई के मानों में कई मानी होते हैं ना, कि अगर तुम इनको कहो कि हमारी कुछ मदद कर दो तो ये बेचारे करेंगे नहीं। और अगर आप इससे मुराद ले मुशरिक, किसी कब्र पे बैठा हुआ किसी से मदद मांगने वाला, तो उनको कहें कि ये शिर्क छोड़ो, गाइडेंस पे आओ, तो ला यत्तबियूकुम कभी नहीं मानेंगे। यानी जब लोगों को सच्चे इल्म किताबे हिदायत की तरफ बुलाया जाता है तो हरगिज़ नहीं आते, और वैसे इधर उधर की करनी वालों और इधर उधर की चीज़ों के नाम पे बुलाया जाए तो मानते हैं। का सवाउन अलैकुम, बराबर है तुम पर, अदाउ तुमूहुम, या तुम उनको पुकारो, अमन तुम सामितून, या तुम खामोश रहो। समत कहते हैं गहरी खामोशी को, साइलेंट, खामोश रहना। यानी इनका हाल ये हो गया इन शिर्क वालों का, फदूहुम, यानी हुक्म नहीं दिया जा रहा बल्कि कहा जा रहा है कि इनको पुकारो, तुम देखो ये इतने शिर्क की वजह से इंडल्ज हो चुके हैं इस गलती में, खराबी में, कि तुम्हारी बात इनके कानों पे असर ही नहीं करती। आप देखिए कौमे नूह से लेकर मक्का वालों तक सबके बुत मरे हुए नेक लोगों के बुत, पीछे भी जिक्र किया था। हमारा तो शिर्क और भी ज्यादा गया गुजरा है कि बुत बनाए बगैर इंसानों को पुकारते हैं। आज हालात क्या हैं, अल्लाह ताला हम सबको बचाए। आप देखिए कैसे कैसे नाम मारूफ हैं, कहीं गौसे आजम, कहीं दस्तगीर, कहीं ख्वाजा खिजर, कहीं कुछ कहीं कुछ, यानी मिथ्स के साथ हमने इन चीजों को लेके रखा हुआ है। आयत 194, अल्लाह ताला कहते हैं चलो ठीक है तुम पुकारो जरा इनको, इन अल्लज़ीना तदउना मिन दूनिल्लाहि इबादुम अम्सालकुम, यकीनन तुम जिनको पुकारते हो अल्लाह को छोड़कर वो तुम्हारी तरह के बंदे हैं। यानी अगर इंसान थे जिंदा और आज वो नहीं है और तुम उनको पुकार रहे हो, तो याद रखो उनमें और तुम में कोई फर्क नहीं है। अल्लाह के आगे वो भी झुके हुए थे, तुम भी झुके हुए हो। फदू हुम, पस पुकारो इनको, जाओ किसी कब्र पे खड़े हो जाओ और पुकारो, फल यस्तजीबू लकुम, फिर देखो वो तुम्हें क्या जवाब देते हैं। इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, यानी अगर तुम्हें यकीन है इस बात का कि तुम इनको पुकारते हो और ये सुनते हैं, तो किसी कब्र पे खड़े होके पुकारो, या अली और या दौतार या गौस कह के देखो, कभी तुम्हें कब्र में से जवाब आया? हरगिज़ नहीं। बल्कि जो नेक बुजुर्ग चले गए दुनिया से, उनको तो क़यामत के दिन इस पे गुस्सा आ रहा होगा। सूरत यूनुस में हम पढ़ेंगे आयत नंबर 29 में कि ऐसे लोग जाके क़यामत के दिन शिकायत लगाएंगे, इन कुन्ना इबादतिकुम लगाफिलीन, हम तो तुम्हारी इबादत से गाफिल थे, हमें नहीं पता हमारी कब्रों पे आके क्या चढ़ावे चढ़ाते थे और क्या दुहाइयाँ देते थे, या शेख अब्दुल कादर जिलानी के नाम के मुशरिकाना वर्द करते थे, क्या करते थे। अब देखिए शऊर को ना बिल्कुल, जिसको कहना चाहिए शॉक्स लगाने वाली आयत है 195, अलहुम अर्जुल यमशूना बिहा, क्या इनके पाँव हैं जिनसे ये चलते हों। चलो तुमने अपने बुत के पाँव बना लिए, मिसाल है, तो क्या उन कदमों में एक कदम चलने की सकत है। अम लहुम ऐदी यब्तशूना बिहा, या इनके हाथ हैं जिनसे ये पकड़ते हों। अम लहुम आयुनी युबसिरून बिहा, या इनकी आंखें हैं जिनसे ये देखते हों। अम लहुम आज़ान यस्माउन बिहा, या इनके कान हैं जिनसे ये सुनते हों। यानी यही से हिस्से हैं ना, दोनों चीज़ें आप देखिए ना कि हाथों से इंसान पकड़ता है, या तिशून बच हिस्सी तौर पे भी होता है, यानी इनके हाथ में चाय का कप पकड़ाओ तो भला पकड़ लेते हैं, या थामने के मानों में, यानी मजबूती से तुम्हें पकड़ते हैं, कोई नहीं कर सकता ना। तो कुले दू दो अशुरा का अकुम सुम मकी दू नी फला तुन जीरोनी, ए नबी आप कह दीजिए इनको कि पुकार लो अपने सब शरीकों को। यानी अब देखिए अल्लाह कह रहे हैं, नबी आप इन सबको कहिए जाओ अपने सारे शरीकों को पुकारो। अब ये हुक्म नहीं दिया जा रहा नऊज़ु बिल्लाह। अब देखिए अगर कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सिर्फ इतना हिस्सा आपको नेट पे भेज दे कि तुम्हारा कुरान तो खुद कह रहा है कि पुकारो इनको, तो कितने हमारे दिमाग घूम जमकेंगे, हाय हाय कुरान तो शिर की बात कर रहा है। ये होता है मिस कोट करना, आधी पीछे से आधी आगे से ले लेके सिर्फ इतना हिस्सा रखना गलत है। फिर सुम्मा की दूनी, मेरे खिलाफ चाल चलो, चलो इनको अपने बुतों को कहो अल्लाह के खिलाफ चलते हैं लड़ते हैं। सूरह हूद आयत 54 में भी हम यही चीज़ पढ़ेंगे, फला तुनज़िरूनी, फिर मुझे मोहलत ना दो। डंके की चोट पे ऐलान करवाया जा रहा है अल्लाह के नबी से कि मैं तुमसे कोई दरख्वास्त नहीं करता कि मेरे साथ नरमी करो, मुझे मोहलत दो। तुम अपने तमाम मबूदों को बुला लो, मेरे खिलाफ जो कर सकते हो कर लो। देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, सूरत अल अनाम आयत 78 में हम पढ़ चुके, इन्नी बरी मिम्मा तुशरिकून, मैं बेजार हूँ उनसे जिनके साथ तुम शिर करते हो, यानी जिनको तुम पुकारते हो मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। ये दुआ कीजिए कि हमारा अकीदा ये बन जाए। वक्त मुआशरे और हालात के तहत हम लोगों की खुशी के लिए सब कुछ करने वाले ना बन जाएं, बल्कि अल्लाह सुबहाना ताला कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बरक्स आयत 196, इन वली अल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब, यकीनन मेरा मददगार तो वो अल्लाह है जिसने ये किताब नाजिल की है, वहुवा यतवल्लस सालिहीन, और सालेह बंदों का वही मददगार है। ऐसे लगता है कि कोई शिर्क के समंदर में डूब रहा था और एकदम उसके हाथ में चप्पू दे दिया। सारा मुआशरा लात मनात उज्जा यऊक यगूस नसर पंचतन पाक को मान रहा है ना, मानने दो, मेरा वली अल्लाह जिसने नज़ल अल किताब। क्या समझ आई? इस किताब के नजूल का मकसद शिर्क का खात्मा था। बिल्कुल वही बात है जो सूरत बकरा 257 में हम पढ़ चुके कि अल्लाहु वलीयुल्लज़ीन आमनु युख्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है जो उनको अंधेरों से रोशनियों की तरफ लेके आता है। तो पता क्या चला इस बात से कि एक बंदा जितना ज्यादा अल्लाह ताला के साथ जुड़ेगा, अल्लाह ताला से मदद मांगेगा, उतनी अल्लाह ताला उसकी मदद करेंगे। अब पता हमें इतनी बात को पढ़ के क्या चला कि शिर्क जैसी कबीह चीज़ है। इससे बचने का रास्ता क्या है? नज़्ज़ल अल किताब, इस किताब से जुड़ने का। कुरान का बुनियादी टॉपिक जो है ना, वो तौहीद का इस्बात और शिर्क की नफ़ी है। आयत 197 में फिर उसी बात को ज़रा और खूबसूरत अंदाज में कहा गया, वल्लज़ीन तदउना मिन दूनिही ला यस्ततीउना नसरकुम वला अनफुसहुम यनसुरून, और जिन्हें तुम पुकारते हो उस अल्लाह को छोड़कर वो तुम्हारी मदद की इस्तेआत ही नहीं रखते और न वो खुद अपनी मदद कर सकते हैं।